तो नरसिंहदेव भगवान का शुभ आविर्भाव तिथि के लिए आप लोग भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए हैं, तो इसलिए मैं सबको स्वागत ज्ञापन करता हूँ। इस साल से हम लोग एक समर फेस्टिवल करते हैं, जैसा गौर पूर्णिमा को फेस्टिवल होता है, तो इस समय भी हर साल हम लोग अक्षय तृतीया से शुरू करके नरसिंह चतुर्दशी तक इस समय आप एक समर फेस्टिवल करेंगे। तो अक्षय तृतीया तिथि, जो तिथि में सत्ययुग का शुरुआत हुआ था, सत्ययुग, इसलिए वो तिथि बहुत शुभ दिन होता है। तो उसी तिथि में जो कुछ हम लोग शुरू करते हैं अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए उसी अक्षय तृतीया तिथि में हम लोग नवद्वीप गौरांग महाप्रभु का औदार्य धाम में रहेंगे, तो हम लोग अक्षय फल मिलेगा। तो इसलिए ये फेस्टिवल हर साल शुरू होगा अक्षय तृतीया से शुरू करके, क्योंकि उस समय मायापुर में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। भगवान माधव को पूरा चंदन का बेस सजाते हैं, और बोट फेस्टिवल होता है, जानू सप्तमी होता है। तो हर साल हम लोग जैसा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हो रहा है, वही समय पे समर फेस्टिवल करेंगे। तो उसमें सेमिनार रहेगा, गौरमंडल परिक्रमा रहेगा, और नरसिंह चतुर्दशी, ये सब कुछ रहेगा। मैं बताएं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नेक्स्ट ईयर आप लोग आ सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी बोल सकता है, क्योंकि गौर पूर्णिमा समय हर आदमी भक्त लोग को स्थान नहीं मिलता है रहने के लिए, तो इसलिए दूसरा मौका दिया जाता है एक फेस्टिवल का। तो अभी हम लोग भागवत से श्रवण करेंगे। हम लोग काल श्रवण गए थे, कब तक? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप असुर का पुत्र होने से भी कैसा इतना बड़ा भक्त बने थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्त थे, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण उनका था, तो भगवत प्रेम का सब कुछ लक्षण उनका शरीर में प्रकाशित होता था, प्रकट होता था। तो प्रहलाद महाराज तो बचपन से खेला धूला करने का उतना मन नहीं लगता था, भगवान का चिंतन करते थे। तो प्रहलाद महाराज भगवान का चिंतन में ऐसा मग्न होकर रहते थे, तो वो आपका काम जो खाना पीना सोना नहाना एक कैसा होता था उनको मालूम नहीं पड़ता था। हर्ष में इतना भगवत चिंतन में तन्मय होकर रहते थे। तो प्रहलाद महाराज तो उनका लक्षण ऐसा दिखाई जाता था, तो कृष्ण प्रेम में विहल होके कभी प्रहलाद महाराज चंदन करते थे, रोते थे, कभी कभी हंसते थे, कभी खूब आनंद प्रकाश करते थे, और कभी उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित अस हसति, क्वचित आह्लाद उद्गायति, क्वचित कब हंसते थे, कब रोते थे, कब जोर से दौड़ने शुरू करते थे। नंदति क्वचित उत्कंठ बिल्लज नृत्यति, क्वचित कभी कभी हा कृष्ण ऐसा बोल के खूब आवेग बस में चित्कार करते थे, और कभी कभी बिल्लज लज्जा शून्य होकर नाचते थे। क्वचित तद भावना युक्त तस्मात अनुचकार, कृष्ण चिंता में मग्न होके तो कभी कभी इतना कृष्ण चिंतन में मग्न हो जाते थे, कृष्ण का कार्यकलाप को अनुकरण करते थे। जैसा ब्रज गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का अन्वेषण करते थे, कृष्ण का विरह में व्याकुलित होके, तो ब्रज गोपियों मिलके कृष्ण का लीला का अनुसरण करते थे। कोई एक ब्रज गोपी पूतना बनती थी, तो और एक ब्रजगोपी एक स्थान पान करके पूतना बद्ध करते थे, कोई गोपी उनका साड़ी को ऐसा कपड़ा को आकाश में उड़ा के गिरी गोवर्धन धारण करते थे, तो प्रहलाद महाराज भी ऐसा करते थे। तो शुद्ध भक्ति प्रेम का ऐसा लक्षण होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन के जब किसी के अंदर में प्रेम भाव आता है तो उनका बाहर का कुछ ज्ञान नहीं रहता है, उनका लक्षण ऐसा होता है जैसे पागल जैसा पागल। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मेरा जीवन में कब सिद्धि आएगा, मैं यथार्थ भक्त बना है ये कैसा मेरे को मालूम पड़ेगा। वो भगवान के पास प्रार्थना करते उसी दिन कब मेरा जिंदगी में आएगा जब लोगों ने मेरे को पागल समझ के मेरा ऊपर धूला धूला छुरेंगे, वो जीवन का सिद्धि है। क्योंकि भक्त ऐसा कर्म करेगा जैसे पागल ही है, कैसा कर्म पागल को माफी के लगेगा। तो बैठते बैठते रहेगा हंसने शुरू करेगा, हंसते रहेगा, फिर कभी रोते रहेगा, कुछ नहीं हठात जोर से दौड़ने लगेगा, ये क्या लक्षण है, तो पागल का लक्षण है। तो जो कोई लोग देखेगा कहते जो पागल है, लेकिन भक्त का क्या होता है, जैसे प्रहलाद महाराज वो कभी कभी खूब विमर्श होकर ऐसे बैठते थे, लोगों सोचते क्या है, बुद्धि है ना पागल है क्या है। लेकिन भक्त का मनोभाव ऐसा क्यों होता है ना, भगवान का विरह, भगवान का विरह से बहुत दुखी होकर बैठता है। तब जब कभी कभी भगवान आते हैं, भगवान को देखते हैं वो हंसते रहते हैं, लोग तो भगवान को देखते नहीं, ये भक्त को देख के सोचते हंसते क्यों, ये तो पागल है, लेकिन वो भगवान को देख के हंसते हैं। और कभी भगवान पास आते हैं फिर चले जाते हैं तो वो पीछे पीछे दौड़ता है, लोगों ने सोचता है अरे ये सब दौड़ते हैं क्यों, क्योंकि वो तो भगवान को देख नहीं पाता है। तो भक्त का व्यवहार ऐसा हो जाता है। ये प्रहलाद महाराज का एक महत्व श्रेष्ठता था। तो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम का जितना सब लक्षण है उनमें से सब लक्षण प्रकटित होता था। जय श्री राधा माधव अस्तु सखीवृंदा की जय। आज माधव नरसिंह रूप धारण करके बैठे हुए उधर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। तो प्रहलाद महाराज, फिर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजा गया। प्रहलाद महाराज 5 years old, 5 साल को हो गए, तो गुरुकुल संडा अमरक के पास भेजा। तो संडा अमरक उनको शिक्षा दी। कुछ दिन के बाद तो राजप्रासाद में प्रहलाद को वापस लाया गया। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप बहुत आदर करते थे, स्नेह करते थे, तो स्नेह करके उनको उठा के गोद में बैठाए। तो युधिष्ठिर महाराज को इधर नारद मुनि बताते हैं, एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रपच्छ कच्छतंग वश्च मन्नत साधुजत भवान। तो हिरण्यकश्यप उनको बच्चा को प्रश्न पूछते हैं, ओ मेरे लड़का तुम तो गुरुकुल में गए थे, मन्नत साधुजत भवान तुमको सबसे श्रेष्ठ क्या लगता है, सबसे क्या अच्छा लगता है। एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य, असुरराट असुर लोगों का जो राजा होता है वो उनको पुत्र को उठा के अंक क्या गोद में बैठा के प्रपच्छ कच्छतंग वश्च उनको पूछने लगे, वश्च मेरा पुत्र मन्नत साधुजत भवान तुमको जो अच्छा लगता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं गुरुकुल में जो पढ़े हुए उसमें से क्या श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। हिरण्यकश्यप सोचते हैं ये बच्चा ये गुरुकुल में से क्या पढ़ेगा, ये प्री केजी में जाता है ना, प्ले ग्रुप बोलते हैं आजकल, प्ले ग्रुप, उधर प्ले ग्रुप में था, उधर क्या पढ़ाए गए। तो इसलिए उसको पूछता है तुमको क्या अच्छा लगता है, सबसे क्या अच्छा है, श्रेष्ठ क्या है। तो उसका उत्तर में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तत्साधु मन ने असुर वज्र देहिनांग सदा समुद्विग्न ध्यान असत्ग्रहात् हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोजत हरिमाश्रय। तत साधु मन ने असुरवर्ज देहिनांग असुरवर्ज हे असुर श्रेष्ठ, इसको पिता को बोलता है हे असुर श्रेष्ठ। तत साधु मन ने हमारे लिए ये बात ही सबसे श्रेष्ठ लगता है। क्या श्रेष्ठ लगता है? देहिनांग, इस जगत में ये देहधारी जीव मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य सदा समुद्विग्न होता है, हर समय बहुत उद्विग्न का साथ रहते हैं। क्यों उद्विग्न है? ना ध्यान असद ग्रहात, इसलिए ये मूर्ख मनुष्य ध्यान असद ग्रहात, इस शरीर जो असत है, जो सत नहीं है, जो नित्य नहीं है, ये भौतिक वस्तु के ऊपर बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान असत ग्रहात, इसलिए मनुष्य को हर समय बहुत उद्विग्न प्राप्त होता है। ऐसा लोगों के लिए क्या श्रेष्ठ होगा? न हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम, ये लोगों के लिए गृह उनका घर छोड़ के भागना चाहिए। क्यों? नहीं, उनका घर अंधकूप जैसा होता है, अंधेरे कुआ जैसा होता है। क्यों? ना ऐसा संसार में रह के आत्मपातम, आत्मा का पतन नहीं होता है, आत्मा का उत्थान नहीं होता है। गृहम आत्म अंधकूपम हित्वा, इसको परित्याग करके वनम गतोजत हरिम अर्चयत, जंगल में जाके भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, ये सबसे अच्छा लगता है। देखिए हिरण्यकश्यप जो ये बात सुना, जो हिरण्यकश्यप हर जगह पर प्रचार करते हैं विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु करके कैसा कोई भगवान, मैं भगवान हूँ, और उनका घर में बैठ के उनका लड़का बोलते हैं मेरे को सबसे अच्छा लगता है घर बाड़ी सब छोड़ के जंगल जाके भगवान विष्णु का आराधना करना। हमारे बंगाल में एक कहावत है, जो सरसे होता है ना, सरसे सरसे तेल होता है ना, इस सरसे में भूत रहते हैं। जो भूत को भगाने के लिए ओझा लोग सरसे दाना व्यवहार करते हैं, उसी में तो भूत है, वो भूत को भगाएगा क्या? तो ऐसा माफी हिरण्यकश्यप लड़का ही ऐसा बोलते हैं, ये मैं पिता, मेरा पिता असुर श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ चीज ये होता है लोगों को घर छोड़ के जंगल में जाके हरि का अर्चन करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कौन सा वन में जाना है, वनम गतोजत हरि मर्चयत। तो वन का मतलब क्या है? वन में कौन है? वन में तो सब हिंस जानवर लोग रहते हैं, उधर जाके क्या करेंगे? तो वन का मतलब वृंदावन, वृंदावन जाके साधु संग करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप जब इस तरह का उत्तर सुना वह चकित हो गया। तो सोचते इस बात एक बच्चा कैसे मालूम हुआ? हिरण्यकश्यप उनका प्रश्न पूछा, वेरी इजी क्वेश्चन, पर्टिकुलर प्रश्न कुछ नहीं था, और पूछा तुमको क्या अच्छा लगता है। और हिरण्यकश्यप सोचता था मैं बच्चा को पूछूंगा क्या अच्छा लगता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? मेरे को लड्डू अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छा लगता है, ऐसा बोलेगा ना? बच्चा लोग क्या बताएंगे? नहीं, रसगुल्ला अच्छा लगता है, उसको ये मालूम नहीं। वो बोलेगा मेरे को बनम गतोजत हरि मर्चयत अच्छा लगता है। तो पहला बार इस बात को सुन के हिरण्यकश्यप घुसा नहीं किया, वो हंसने लगा, वो हंसने लगा, बोले ओ कोई दुर्बत लोग आके हमारा बच्चा को दिमाग गड़बड़ कर दिया। तो स्कूल में कोई हरे कृष्ण लोग आते हैं लगते हैं, आके इसको कुछ मंत्रण देते हैं। तो पहला बार कुछ घुसा क्या नहीं, बोला संदा अमर को इसको ले जाओ, फिर अच्छा से सिखाओ। क्या सिखाओ? तो दंड भेद दान जो शासन करने के लिए जो चार तरीका सिस्टम है, दान भेद दंड से सिखाओ अच्छा से। और एक काम करो, अच्छा से सिक्योरिटी रख दो, दरवान रख दो, कोई वैष्णव लोग अंदर घुस नहीं पाएंगे, कोई वैष्णव लोग जाके इसको मंत्रण देके इसको दिमाग को गड़बड़ कर दिया। तो फिर गुरुकुल में भेजा, तो गुरुकुल में कुछ दिन रहने के बाद संडा अमर का उसको बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखो प्रहलाद, तुम्हारा बंधु लोग कितना अच्छा लड़का है, तुम क्यों इतना बदमाश होते हो? तुम पिताजी को मानो, दूसरा कोई भगवान नहीं, तुम्हारा पिता ही भगवान है। सब तरीका समझता है। और गुरुकुल मास्टर उसको समझेगा क्या? वो गुरुकुल मास्टर को ज्ञान देते हैं, पूरा वैदिक ज्ञान सिखाता है। तो कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप के पास ले आए। तो हिरण्यकश्यप सोचता है, इस बार तो बहुत अच्छा प्रहरी रखा है, तो कोई वैष्णव लोग आ नहीं पाए, मेरा लड़का अच्छा ज्ञान प्राप्त होकर आया। तो फिर आदर करके, स्नेह करके गोद में बैठाया और फिर उसको पूछा, इस बार वो खूब चालाक, वो पूछता नहीं तुमको क्या अच्छा लगता है, तो तुमको क्या अच्छा लगता है बोलते है, फिर वो दूसरा कुछ उत्तर देगा। वो पर्टिकुलरली बोलता है, गुरुकुल में जो पढ़ा लिखा किया, गुरु से जो शिक्षा प्राप्त, उससे क्या तुमको अच्छा लगता है बोला। तुम्हारा मन माने बोलने से नहीं होगा, गुरु तुमको जो सिखाया उससे क्या अच्छा लगता है तुम बताओ। तो इस टाइम प्रहलाद महाराज ने बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणम किरते भगवती अधा तत्मन्य अधितम उत्तमम। हमको हमारा ऐसा मन आता है कि श्रेष्ठ क्या है, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणम। ये नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन का द्वारा भगवान विष्णु को आराधना करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये दूसरा बार प्रश्न का उत्तर दिया। इसको सुन के हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा किया, छंद और अमर का ऊपर ये क्या बात बोलते, तो मैं तो सिक्योरिटी रख दिया, कोई वैष्णव लोग अंदर घुस नहीं पाते हैं, तुम ही ये लोग को ऐसा शिक्षा दिया। तो साफ साफ डर तरोल निकला, तुमको मैं हत्या करूंगा। तो ब्राह्मण लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा किए नहीं। फिर समझाया, ये हमारा शिक्षा नहीं है, हम लोग ऐसा शिक्षा नहीं दिया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तब थर्ड क्वेश्चन हिरण्यकश्यप पूछते हैं। पहला क्वेश्चन था, तुमने जो कुछ, तुमको क्या अच्छा लगता है? तो इससे उत्तर दिया, जंगल में जाकर हरिभजन करना सबसे अच्छा लगता है। तो फिर सिक्योरिटी रख के भेजा सेकंड टाइम। इस बार बोला, गुरु तुमको जो सिखाया उससे क्या अच्छा लगता है? तो बोला, नवविधा भक्ति करना सबसे अच्छा लगता है। तो गुरु सिखाया था, संडमर के सिखाया, उसको संडमर कैसे सिखाया था? नहीं, लेकिन प्रहलाद का गुरु कौन है? वो तो नारद मुनि है। वो सही बात बताया, मेरा गुरु जो बता मैं उसी बात ही बताता हूँ तुमको। संडमर वो तो संडमर कैसे बात बताया? नहीं नहीं, मेरा गुरु जो बताया वही बात मेरे को बताता, तुमको बताता हूँ। तो ठीक है, तो संडमर को बताए, नहीं नहीं हम लोग कैसे सिखाए नहीं। तो फिर हिरण्यकश्यप पूछते हैं, प्रहलाद तो तुम्हारा गुरु तो तुम कैसे सिखाया नहीं, तो तुम किधर से ये बात सीखा, तुम कैसा एक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा मन में ऐसा चिंतन कैसा आता है, तुम क्या दूसरा से ज्ञान को प्राप्त होता है, तुम आपसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? मैं संख्या पे बताऊंगा, क्योंकि फिर और लीला ज्यादा है, फिलोसफी थोड़ा संख्या में बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी। तो प्रहलाद बताते हैं वो पिताजी को, तुम मेरे को पूछते हो भगवान के प्रति मेरा ऐसा मति गति कैसा आ गया, कोई तो मेरे को सिखाते नहीं, कैसा प्राप्त हुआ? तो उसको उत्तर में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर न कृष्ण परत सतवा मिथ अभिपत्यते गृह बतानांग अदांत गोभी विशदाम तमिश्रंग पुनः पुनः तर्वित सर्वनानांग। वो पिता को ज्ञान देने शुरू कर दिया, मतिर न कृष्ण परत सतवा, पिताजी किसी का मन भगवान कृष्ण में नहीं लगता है, परत सतवा किसी का प्ररचना में भगवत भक्ति नहीं आता है, स्वतः आपका चेष्टा में भी नहीं आता है, परत स्वतः मिथ अभिपद्यते किससे सुन के और आपका चेष्टा दोनों से भी नहीं होता है, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात। तो कैसा होता है कृष्ण में मति गति, कैसा होता है? किससे सुन के नहीं होता है, आपका चेष्टा से भी नहीं होता है, कैसा तरीका लोगों का? ना आप जैसा अदांत गोभी विषतांत मिश्रम, जिसका इंद्रिय नियंत्रण में नहीं रहता है अदांत गोभी, वो क्या करते हैं पुनः सर्वितं सर्वनाना, जैसा आख सुगर कैन, सुगर कैन गद्दे गद्दे है? गन्ना 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 का जूस, कोई गन्ना को चबा कर गन्ना का जूस खाता पीता है फिर उसको चबाते हैं, हाँ पुनः सर्वित सर्वनाना। तो जो लोगों ने ऐसा अदांत को भी इंद्रिय को संजत किए नहीं, वो अंधकार में घुसते हैं, वो लोगों का कभी भी भगवान कृष्ण में मति गति नहीं होगा, किससे सुन के भी नहीं होगा, आपका चेष्टा से भी नहीं होगा। तो कैसा होगा, अब तुम जैसा राजा हो ना, ते विधु स्वार्थ गति में ही विष्णु, जीवन का असल स्वार्थ क्या है लोगों को मालूम नहीं, वो बोलते ये स्वार्थ पर है, लेकिन इस जगत में कोई स्वार्थ पर नहीं है, क्योंकि क्या स्व क्या है, अर्थ क्या है लोगों को मालूम नहीं है। स्व मैं आत्मा हूँ और अर्थ है विष्णु भक्ति, इसको लोगों को मालूम नहीं। ना ते विधु स्वार्थ गति में ही विष्णु, दुराश है आज बही अर्थ मानना, ये दुराशी होके जो बहिरंगा वस्तु को यथार्थ अर्थ करके मानते हैं, ये लोगों का गति क्या होता है ना, अंधा तथा अंधई उपगीय मानम, एक अंधा आदमी दूसरा लोगों को लीडिंग करेंगे तो जैसा सब लोग जाकर गड्ढा में गिर जाएंगे, ये अवस्था ऐसा होता है। तो ये लोगों का कभी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर देते हैं, ध्यान से सुनना। तो कृष्णा से मतिगत कैसा होगा, किससे सुन के नहीं होगा, आपका चेष्टा से नहीं होगा, और जो लोग अंधा है वही अंधे लोगों को अनुगमन करने से क्या फायदा मिलेगा। तो अंत में प्रहलाद महाराज बताते हैं, न एसं मति तावत उरु ग्रह्मांग्री स्पृशति जावत महियसं पाद रजाभिषेकम निष्किंचनानं न वृणीते जावत, न एसं मति उरु क्रह्मांग्री स्पृशति, ये लोगों का मति मन उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को स्पर्श कर नहीं पाएगा, तावत तब तक कर नहीं पाएगा, कब तक ना जावत मही असंग पद रजभिषेकम, जब तक निष्किंचनान न वृणित जावत, जब तक निष्किंचन भगवत भक्तों का चरण का धूला रेती लेके आपको अभिषेक नहीं करते हैं, तब तक भगवत प्रेम भगवान कृष्ण में मतिर न कृष्ण परत सतवा। ये बहुत बड़ा अद्भुत रहस्यपूर्ण तत्व को प्रहलाद महाराज उद्घाटित करते हैं। हम लोग सोचते हैं हर रोज मंगल आरती करूंगा, जप करूंगा, भगवान को पकड़ पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान इससे वशीभूत नहीं होता है, भगवान एकमात्र वशीभूत हो गए जो उनका भक्त का वशीभूत होता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने बताए, तो भगवान में मतिगति होगा, हाँ भगवान भक्त का जब कृपा होगा, तो जब ऐसा ज्ञान देने शुरू किए प्रहलाद महाराज, तो हिरण्य को बहुत गुस्सा किया और बहुत बुरा भाषा में उनको गाली देने शुरू कर दिया, ये ऐसा लड़का है इसको अभी खत्म करना चाहिए। तो साथ साथ वो निर्देश दिया, तो कैसा प्रहलाद महाराज को बहुत तरीक उसको खूब उत्पीड़न करते थे। भागवत में एक दो श्लोक में वर्णन किया गया, विष्णु पुराण में एक दो चैप्टर लिखा गया कैसा उन लोग को, कैसा ये लोग प्रहलाद महाराज को उत्पीड़न करते थे। तो हिरण्य कश्यप ने बताए इसको अभी मार डालना चाहिए। तो जब असुर लोगों ने सुने, सब हथियार अस्त्र लेके, तो प्रहलाद महाराज छोटा बच्चा है, प्रहलाद महाराज को हथियार लेके उनका शरीर में ऐसा घुसाने शुरू कर दिए। तो प्रहलाद महाराज क्या किए, तो प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का स्मरण किए। हर समय जो कुछ कभी अस्त्र के द्वारा आक्रांत होता है, कभी विष का द्वारा आक्रांत होते हैं, कभी आग का द्वारा आक्रांत होता है, प्रहलाद महाराज एक एक भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। जब अस्त्र के द्वारा आक्रांत होते थे, प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु को स्मरण किए। उनका स्मरण कैसा था, तो ये लोग मेरे को मारने के लिए आते हैं, तो सर्व जगत को विष्णुमय देखने लगे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ऐसा चिंतन करने लगे, मेरा अंदर में विष्णु है, इस अस्त्र में विष्णु है, जो मारते हैं वो विष्णु है, इस सब जगत को विष्णुमय देखे, पर कौन किसी को मारेगा। ये भक्त का लक्षण होता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। तो अस्त्र में विष्णु है, अंदर में विष्णु है, जो मारते हैं विष्णु है, बस वो जो अस्त्र लगाते हैं जितना अस्त्र सब टूट जाता है, गिर जाता है। हाँ, कुछ वो और सुस्त होता है और सख्त हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो अस्त्र में मारा नहीं, याद रखना है, पहला अस्त्र व्यवहार किए थे। और प्रहलाद किसी को स्मरण किया था, भगवान किसी को स्मरण किया था, विष्णु भगवान का स्मरण किया था। तो अस्त्र काम किया नहीं, तो हिरण्यकश्यप बुलाया नागलोक से, विषाक्त नागलोकों को बुलाया। हाँ, उधर वेरी पॉइजनस नागलोक रहते हैं, नाग रहते हैं, कुलक अंधक तक्षक जैसा नाग, और वो सर्प इतना विषाक्त होते हैं, वो सर्प आने से किसी को कामड़ ऐसा बाइटिंग जरूरत नहीं होता, कामड़ना नहीं जरूरत है। वो लोग से वो पास में जाएंगे तो लोग मर जाएंगे। तक्षक जैसा था ना, जैसा हाँ सांस में लोग मर जाएंगे, और ऐसा सांप को ले आया, और इस सांप ने प्रहलाद को कामड़ने लगे। तो जब प्रहलाद महाराज का आक्रमण करने लगे, तो प्रहलाद महाराज तो कुछ हुआ नहीं, प्रहलाद महाराज तब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जब अस्त्र व्यवहार किया विष्णु का स्मरण किया, जब सर्प लोग आए, जैसे भगवान श्री कृष्ण सर्प का पराक्रम से भक्त लोग को रक्षा किए थे, कौन सा सर्प से भगवान किसे रक्षा किए थे, कालियानाग से। कालियानाग इतना पावरफुल सर्प था, उनका विष इतना विषाक्त था, किसी को क्या कर दंसना दंसना किसी को दंसना जरूरत नहीं था। कोई आकाश में उड़ जाता था तो मर के गिर जाता था, ऐसा पावरफुल। वही से माफे एक पावरफुल पॉइजनस स्नेक आए थे, वो डांसते थे। फिर प्रहलाद महाराज मरा नहीं, तो ये लोग जाके हिरण्यकश्यप को बताए, हिरण्यकश्यप जी हम लोग इतना डांसते वो तो मरते नहीं, अरे हमारा दांत सब टूट गया, हमारा हाथ आटक अभी आ गया, हम लोग अब जाते हैं, ये इसको मार नहीं पाएंगे। तो हिरण्यकश्यप अभी बुलाया बड़ा बड़ा हाथियों को बताया, दिग्गज दिग्गज होता है जैसा पहाड़ जैसा ऊंचा हाथी होता है, और हाथियों को बताया तुम लोग पर दांत है ना, जो क्या है दांत, इसका बीच में रख के उसको चापो, ऐसा चाप के उसको मारो। तो पैर में रखे दबाते थे, वो नहीं मारा, वो तब स्मरण करता है गोविंद का स्मरण करता है। जब अस्त्र लगा आक्रमण किया, किसी का स्मरण किया सब प्रहलाद विष्णु को, और जब सर्प दंशन हुआ कृष्ण को, और जब हाथी लोग आ गए तब गोविंद का स्मरण करते हैं। अब गोविंद का स्मरण करके इनका शरीर इतना स्ट्रांग हो गया, ये हाथी लोग से उनका दांत देकर उसको प्रेस चापाता है तो जो दांत सब टूट जाता है। तब हिरण कश्यप बोला ए भागाओ, ये लोगों से भागाओ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तभी क्या करना, तुम सब आग काट ले आओ, लकड़ी ले आओ, लकड़ी लेके आग लगाओ, क्योंकि उसी समय जो अग्नि देवता वायु देवता पानी का देवता कुछ काम नहीं करते थे, उसको रिटायर्ड हो गया था, ये अग्नि वायु पानी हिरण्यकश्यप का निर्देश का अनुसार काम करते थे। तो अग्नि देवता का लगाओ और इसको आग में फेंक दो, वो जल जाएगा अंदर में। तो सो लकड़ी ले आए, आग लगा दे, और प्रहलाद महाराज को उसका बीच में बैठा दे, और सब लोग सोचते हैं प्रहलाद महाराज तो जल गया अंदर में। और कुछ देर के प्रहलाद बाद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं ओ पिताजी आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी लगता है इधर, ऐसा लगता है मेरा चतुर्पा से पद्म फूल है, पद्म का फूल होता है ऐसा लगता है। फिर उन्होंने कहा आश्चर्य है तुम अभी भी जिंदा है उसमें। तो फिर उधर से आग से भी रखा मिल गया, तो ऐसा एक एक तो फिर क्या हुआ, संडा मरकर ने बताया ठीक है छोटा बच्चा है, हम लोग उसको ठीक कर दें, गुरुकुल में भेजो कुछ दिन के लिए। तो गुरुकुल में ले गए तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर जब इसको वापस लाए तब हिरण्यकश्यप बताया एक काम करो, उनको जो रसाई करते हैं ना पाक पकाने वाले पाचक होते हैं उसको बताया, पाकशाला नहीं, जो पाचन करते हैं उसको पाकशाला बोलते हैं, जो पकाते हैं उसको बुलाया, बोला उसको तुम काम करो, जब प्रहलाद को मालूम नहीं होगा तुम इसमें हलाहल विष दे दो, कालकूट विष दे दो सब खाना में, तो खाएगा तो खाके मर जाएगा। तो जो विष दे के ले आया प्रहलाद महाराज अनंत भगवान को स्मरण करके तो सब भोग चढ़ाया और सब खा लिया, और खाने के साथ विष सब अंदर में जीर्ण हो गया। तो पकाने वाला सब डर के हिरण्यकश्यप के पास गए और बताए देखो ऐसा हम लोग सब विष दिया था कुछ तो हुआ नहीं। तब हिरण्यकश्यप बोला कुछ ब्राह्मण को बुलाया, बोला एक काम करो तुम लेके इसको ठीक करो, इस समय ठीक नहीं होगा तो इसको एक कृत्या सृष्टि करो मंत्र का प्रभाव से। ये ऋषि लोग बोला हम लोग कृत्या सृष्टि करेंगे जो कृत्या इसको मार डालेंगे। तो प्रहलाद को समझाने लगे, प्रहलाद समझा नहीं, तो ये लोग आग जैसा उसका मंत्र का प्रभाव से आग जैसा एक कृत्या को सृष्टि किए। तो कृत्या मुसल धारण करके प्रहलाद महाराज को मारने के लिए गया। आज जब मुसल लगे प्रहलाद महाराज का वक्ष को ऐसा लगाया तो प्रहलाद महाराज तो कुछ हुआ नहीं, पूरा उसका मुसल तक चूर्ण विचूर्ण हो गया। तब एक कृत्या को मालूम पड़ा ये प्रहलाद तो कुछ अपराध नहीं निरीह है। तो जो ब्राह्मण लोग एक कृत्या को सृष्टि किए थे वो कृत्या जाके सबको मार डाला। तो प्रहलाद महाजन रोने लगे, ओ ये लोग ब्राह्मण लोग क्यों मर गए, भगवान ये लोग को बचाओ, मैं तो किसी में अंतर नहीं देखता हूँ, मेरे लिए तो सब समान होता है। ऐसा भगवान का स्मरण करके जो स्पर्श किया, जो स्पर्श किया तो फिर वो लोग फिर जागे। तो ऐसा करके वेराइटीज तो प्रहलाद महाराज का एक बार ले गए थे हिरण्यकश्यप, बहुत बड़ा अट्टालिका का ऊपर पर बैठा था। तो हिरण्यकश्यप उसको बोलता अरे प्रहलाद तुमको इतना शक्ति कैसे किधर से आते हैं? तो मेरा क्या शक्ति है, तुम जिससे शक्ति प्राप्त होते मैं भी उसी से शक्ति प्राप्त होता हूँ। ऐसा जब ज्ञान देना शुरू किया हिरण्यकश्यप इतना घुसा क्या सोच वो अट्टालिका ऊपर बैठे उधर से नीचे फेंक दिया, उसे पहाड़ को गिर के मर जाएगा। फिर ऐसा पवन देवता को बताया बुलाया, बोला तुम्हें काम करो इसके अंदर में नासिका में रुक्ष हवा घुसने दो वो उससे मर जाएगा। तो रुक्ष जितना भी कोशिश किया तो नहीं मरता था। तो अभी क्या होगा, तो हिरण्यकश्यप बहुत चिंता होगा कभी मरते नहीं। तो फिर गुरुकुल में भेजा, ठीक है तुम लास्ट ट्राई करो। तो गुरुकुल में जाके छंड अमर का समझाता है, तो छंड अमर का ने हिरण्यकश्यप को समझाया ये बच्चा आदमी है, वो क्या भूल करते हैं ठीक करते हैं उसका कुछ ज्ञान नहीं होता है, आपको इतना गुस्सा नहीं करना, इतना चिंता में नहीं रहना, हमारा पिताजी शुक्राचार्य आएंगे, जब शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्त होगा उनका सेवा करेगा तो इनका मति ठीक हो जाएगा, उनका ज्ञान ठीक हो जाएगा, आप मत सोचिए हमारा पास भेजिए। तो हिरण्यकश्यप पूछता है और संडा अमर के पास में है जो प्रहलाद तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कोशिश कर तुमको मारने तुम क्यों मरते नहीं, इतना कोशिश कर तो मरते नहीं क्यों? तो प्रहलाद महाराज बोलते मैं कैसे मरूंगा, तुम लोग मेरे को आग आग में रखते हो अग्नि में रखते हो, तुमको मालूम है अग्नि क्या है, ये अग्नि तो मेरा पिता का मुंह है मुख है, अग्नि पिता का मुख का मतलब ये अग्नि भगवान विष्णु का मुख होता है ना, भगवान विष्णु जो कुछ खाते हैं ये यज्ञ अग्नि के माध्यम से खाते हैं। अब प्रहलाद सोचते हैं तुम आग में डालते हो तो मेरा पिता का मुख में मैं जाता हूँ तो मैं प्रोटेक्शन हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और क्या और तुम मेरे को विष दे देते हो, विष पॉइजन देते हो, अरे पॉइजन तो मेरा अंकल है मेरा मामा है, मैं कैसा मरूंगा, पॉइजन कैसा प्रहलाद का मामा हुआ। तो प्रहलाद सोचता है उनका चिंतन कैसे देखो, भक्तों का चिंतन कैसा होता है, तो पॉइजन को मामा करके समझते हैं, क्योंकि ना तो समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी और समुद्र से पॉइजन भी उत्पन्न हुआ था। तो जो लक्ष्मी देवी पॉइजन भाई और बहन होते हैं, तो लक्ष्मी देवी प्रहलाद का माँ होने से तो पॉइजन क्या होगा, उनका मामा होगा। तो प्रहलाद बोलते हैं पॉइजन मेरे को कैसा मारेगा, ये विष तो मेरा मामा है वो कैसा मारेगा, और तुम मेरे को समुद्र में फेंक देते हो, अरे हाँ तुम मेरे को सर्प ले आते हो दंसने के लिए, अरे सर्प दंसने से मेरे को क्या होगा, ये तो मेरा बाबा का बेड है, बेड सज्जा होता है। तो भगवान विष्णु तो नाक साक का ऊपर शयन करते है ना, तो वो सोचते हैं इसमें मेरा क्या होगा, ये तो मेरा बेड है, मेरे पिताजी का गोद पर बैठा के लगता है मेरे को। तो भगवान का भक्त कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं इसे समझना चाहिए। उन लोगों का चेतना इतना उन्नत स्तर पर चले जाता है ना, वो निर्भीक हो जाता है। तो उसी स्तर में जब चेतना कलुष मुक्त हो जाता है, तब जंगल में मुनि ऋषि लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, तब शेर आते हैं, भल्लुक आते हैं, तो वो खाते नहीं है, क्योंकि उन लोगों का द्वंद्व भाव नहीं है, ये मेरा है ये तुम्हारा है ये भाव नहीं होता है। इसीलिए जानवर लोग भी उन लोग का आक्रमण करते नहीं है, मन को इतना पवित्र हो जाता है। तो इस बार फिर उसको लेके गए प्रहलाद महाराज, फिर गुरुकुल में गए। तो गुरुकुल में जाके प्रहलाद महाराज अभी क्या क्या ना, गुरुकुल बच्चे लोग को पढ़ाने शुरू कर दिया है, खेलने का टाइम होता है, सब बच्चे लोग को बुला के सब ज्ञान देते हैं, देखो हम लोग के शरीर नहीं है, ये भगवान है, ये है वो है। कई दिन संडा अमर का के देखे खेलने का टाइम, सब बच्चे लोग उधर जाके हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो संडा अमर को सीधे सर्वनाश हो गया, तो ये लोग हमारा स्कूल में रखेगा तो सब सबको बिगाड़ देगा अभी। तो फिर हिरण्यकश्यप को बोला है संडा अमर को, देखो तुम्हारा पुत्र तो बिगड़ गया, अभी हमारा स्कूल में जाकर सबको बिगाड़ते हैं और सबको कृष्ण भक्ति बना देते हैं, तो महासमस्या भी क्या होगा। हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित तो हो गए, तो मरते नहीं और दूसरे को भी बिगाड़ते हैं। तब तो असुर लोग को बुलाए, बोलते ये एक कुत्ता जैसा है, कुत्ता का पूछ को जैसा कभी भी सीधा नहीं कर पाता है, एक कुत्ता का माफिक है, इसको कभी भी सीधा नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो और बहुत कुवाक्य उनको प्रयोग किया, तो इसका काम करो, वो जब तक तो मरते नहीं, अभी तो दूसरे को बिगाड़ने शुरू कर दिया, एक काम करो उसको लेके तुम इसको नाक फांस में बांधना चाहिए, नाक फांस में बांध के इसको समुन्द्र का अतल गर्भ में फेंक दो, वो उधर अंदर में रहेगा, उधर रह के पचेगा, पचते पचते होकर वो मरेगा उधर जाके। तो ऐसा सोच के उसको नाक फांस के बांध के सागर का दरिया का समुन्द्र का गर्भ में फेंक दिए, और जो समुन्द्र का गर्भ में फेंक दिए तब तो प्रहलाद महाराज को विचलित हो गए। तो प्रहलाद महाराज विचलित हो गए, तब पूरा समुद्र विक्षुब्ध होने शुरू किया और समुद्र का पानी इतना उत्ताल तरंग सृष्टि हुआ, तो सारा पृथ्वी सारा ब्रह्मांड पानी भरने शुरू कर दिया। तब हिरण्यकश्यप सोचते हैं ये लड़का तो महाबदमाश, जिधर भी जाने भी तब भी मेरे को हैरानी करता है। तो सब असुर लोग बता, तुम एक काम करो, बड़ा बड़ा पहाड़ का पर्वत को उठाओ, पर्वत को उठा के निश्चिद्र करके इसके ऊपर चापाओ, अतल समुद्र का गर्भ में और बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत लेके इसको चापा दो और उसका अंदर में रहेगा, और इसके अंदर में रहकर उधर मरेगा। तो ऐसा सोच के सब असुर लोग बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत लेके सो निश्चिद्र करके प्रहलाद के ऊपर चापा दे, तो अभी हिरण्यकश्यप निश्चिंत हो गया, अभी वो उधर बसते मरते जो करना दो उसको, वो तो मरेगा ही, समुद्र का नीचे इतना पहाड़ पर भी और क्या कर रहा है, तो उसे सोचते उसका निश्चिंत हो गया। और तो समुद्र में जाके वो भगवान का चिंतन करते हैं, समुद्र का यात्रा करते हैं, उधर जाकर पहाड़ पर भगवान स्मरण करते हैं। तो वो ऐसा मन में चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान स्मरण करके उस समय एक अहंग्रह उपासना का पंथा अवलंबन किया। अहंग्रह उपासना का पंथा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज साथ में आपको बहुत अच्छी अपराधी मानते थे, तो ऐसा किया। तो वो क्या कहते हैं, विष्णु पुराण में इसे वर्णन आते हैं, ये अहंग्रह उपासना का पद्धति ऐसा होता है। कभी कभी साधक आपको भगवान करके यह चिंतन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज, इसलिए जगत ब्रह्ममय विष्णुमय होता है, तो इतना सोचने लगे मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा अंदर में असीम शक्ति है। ऐसा चिंतन करते हुए करते हुए करते हुए उनका अंदर में इतना शक्ति का प्रकाश हुआ तो जितना पहाड़ पर्वत उनका ऊपर दबा के रखे थे तो उनका शरीर में इतना अनंत शक्ति का प्रभाव प्रकाशित हुआ। तो पहाड़ पर्वत से धुले पैसे आकाश में उड़ते है ना, वैसा मैं उड़ने लगे। हाँ, और प्रहलाद महाराज हाँ से पहाड़ का अंदर से नमस्कार उनका पुत्र लड़का है ना, फिर बहुत प्यार करके आदर करके बैठा।